बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा अभिवादन। श्रोताओ, कैसे हैं आप? हमें पूरा विश्वास है कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह से ठीक हैं और हमारे साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम के अंतर्गत पवित्र शास्त्र बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि ये अध्ययन आपके जीवन के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। तो आइए, इससे पहले कि आज के प्रवचन को हम सुने, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हमारे सभी श्रोता भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हमारा हार्दिक अभिनंदन। हमें आशा है कि आप प्रभु की दया से कुशल हैं और आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तैयार हैं। सो प्रिय मित्र, हम भी आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपसे हमारा निवेदन है कि जब आप कार्यक्रम को सुनते हैं तो आप हमें पत्र लिखना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इन दिनों हम अपने कार्यक्रम में नए नियम से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और ये पुस्तक बाइबल की अंतिम पुस्तक है और एक विशेष प्रकार की शैली में इसको लिखा गया है जिसे भेद प्रकट करने वाली भाषा शैली कहा जाता है। ये प्रकाशनों की और या दर्शनों की पुस्तक है और पुस्तक के केंद्र प्रभु यीशु मसीह हैं और ये महिमान्वित प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है। तो इसलिए जब आप इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि यह आपके उद्धारकर्ता, आपके स्वामी प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है। सो इसी विचार को ध्यान में रखते हुए हम आज भी ये अपने बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे, किंतु इससे पूर्व के अपने कार्यक्रम में कुछ आगे बढ़ें। अपने मनों की तैयारी व आत्मिक सहायता के लिए हम प्रभु परमेश्वर से सामर्थ मांगें। हम प्रार्थना करें। हे अति सामर्थी, अनुग्रहकारी, दयालु, प्रेमी पिताजी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज के इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हमारी सहायता करने की कृपा करें। जिस प्रकार से आपने पिछले दिनों में हमारी सहायता की है, आज भी हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन के भेदों को हमारे समक्ष स्पष्ट करें और हमारी सहायता करें कि हम आपके वचन पर विश्वास कर सकें। हमारे मध्य में यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी संकट में है या किसी रोग से पीड़ित है या किसी घोर पाप में फंसा हुआ है, प्रभु आप उनकी सहायता करने की कृपा करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हाँ तो मित्र, हम प्रेरित यूहन्ना को स्वर्ग में देख रहे हैं और प्रेरित यूहन्ना ने स्वर्ग में एक पुस्तक को देखा है और मेमने ने उस पुस्तक को खोला है। ये परमेश्वर का मेमना, जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। और उसके पश्चात हम चार घोड़ों को देख रहे हैं। सर्वप्रथम हमने श्वेत घोड़ा देखा और जब दूसरी मोहर खुली तो लाल घोड़ा देखा और तीसरी मोहर खोली गई तो काला घोड़ा देखा और चौथी मोहर खोलने पर हम हल्के पीले रंग के घोड़े को देख रहे हैं। पीले रंग का संबंध महामारी तथा ताउन या विपत्ति से है। ये इनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये पीला घोड़ा इन बीमारियों का, इस महामारी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। डॉक्टर फ्रैंक हॉल्टमैन, जो बैक्टेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अर्थात जीवाणिक विभाग के प्रमुख हैं, उनका कहना है, जबकि किसी नगर की विशाल जनसंख्या को नष्ट करने के लिए एक परमाणु बम की आवश्यकता होती है, किंतु जीवाणुओं के द्वारा एक सप्ताह में एक विशाल जनसमूह का सफाया किया जा सकता है। ये जीवाणु इतने सामर्थ्य होते हैं। और आज हम नाना प्रकार के रोगों को देखते और उनके विषय में पढ़ते और सुनते हैं। उनका स्रोत कोई विचित्र नाम का जीवाणु है और बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं, और जब तक चिकित्सक और वैज्ञानिक उसका सामना करने की तैयारी करते हैं, वह लाखों जीवनों को नष्ट कर चुका होता है। मित्रवर, कलीसिया के मेगारोहण के पश्चात संसार के निवासी वास्तविक बीमारियों और महामारियों तथा विपत्तियों को भोगेंगे। और इस प्रकार हमने चार घुड़सवारों को देखा और ये उसी ढंग का पालन कर रहे हैं जिसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर रहते हुए की थी। मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के 5 से 8 पदों को आप हमारे साथ देखें, जहां जैतूनी पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों के विषय में चर्चा की है। यहां प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, क्योंकि बहुत लोग मेरे नाम से ये कहते आएंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को धोखा देंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। देखो, भयभीत ना होना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति जाति के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़े होंगे और बहुत से स्थानों पर अकाल पड़ेंगे और भूकंप आएंगे, परंतु ये सब बातें तो पीड़ाओं का आरंभ ही होंगी। सो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने जैतूनी पहाड़ी उपदेश में इन बातों की चर्चा करते हैं, और इस प्रकार से ये महाक्लेश का प्रारंभ होगा। और अब हम देखते हैं पांचवी मोहर के खोले जाने को। यह हमारा विषय है शहीदों की प्रार्थना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 9वें और 10वें पद को आप हमारे साथ देखें। ये पद इस प्रकार से बताते हैं, जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन तथा उनकी निरंतर गवाही के कारण वध किए गए थे। वे उच्च स्वर से पुकार कर कह रहे थे, हे पवित्र और सच्चे प्रभु, तू कब तक न्याय ना करेगा तथा कब तक पृथ्वी के निवासियों से हमारे रक्त का प्रतिशोध ना लेगा। मित्र, ये वेदी स्वर्ग में है और निसंदेह ये वो स्थान है जहां प्रभु यीशु मसीह ने संसार के पापों के लिए अपना प्राण दिया। मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह यथा शब्द अपना रक्त लेकर स्वर्ग में गए। मेरा विश्वास प्रमाणित करते हैं इब्रानियों की पत्री का 9वां अध्याय उसके 22 से 24 पद, जिन पदों में इस प्रकार से लिखा हुआ है, व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और लहू बहाए बिना क्षमा है ही नहीं। इसलिए आवश्यक था कि स्वर्गीय वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाते, परंतु स्वर्गीय वस्तुएं स्वयं इनसे भी उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती, क्योंकि मसीह ने हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का प्रतिरूप मात्र है, प्रवेश नहीं किया, वरन स्वर्ग ही में प्रवेश किया कि अब हमारे लिए परमेश्वर के सामने प्रकट हो, कि अब हमारे लिए परमेश्वर के सामने प्रकट हो। सो मेरे मित्र, ये पद मेरे विश्वास को प्रमाणित करते हैं कि स्वर्ग में वेदी है और प्रभु यीशु मसीह वहां अपना रक्त लेकर स्वर्ग में गए हैं। जिन प्राणों का यहां उल्लेख किया गया है वे पुराने नियम के संत हैं, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय के 49 से 51 पदों में बताया है। इन पदों में लिखा है, इसी कारण परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगी, उनमें से कुछ को तो वे मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, जिससे कि सृष्टि के आरंभ से जितने नबियों का लहू बहाया गया है उसका लेखा इस पीढ़ी के लोगों से लिया जाए, अर्थात हाबिल के लहू से लेकर जकरिया के लहू तक का लेखा, जिसकी हत्या परमेश्वर के भवन और वेदी के मध्य में की गई थी। हाँ, मैं कहता हूं कि इसी पीढ़ी के लोगों से लेखा लिया जाएगा। मित्रवर, इनमें वे लोग भी सम्मिलित हैं जो महाक्लेश युग में वध किए जाएंगे। ये प्राण पूर्णता पुराने नियम के ठोस आधार पर परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार न्याय की दुहाई दे रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम इस स्थान पर उनको देख रहे हैं। यूहन्ना बताते हैं, जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन तथा उसकी निरंतर गवाही के कारण वध किए गए थे। इनमें प्रभु यीशु मसीह के समय के शहीद और इसराइल के समय के नबी और उसके पश्चात के समय में भी जो महाक्लेश युग में लोग प्रभु के वचन के कारण और प्रभु की साक्षी के कारण शहीद होंगे, उनकी आत्माएं इस स्थान पर एकत्रित हैं। दूसरे शब्दों में क्लेश युग के संतों को भी दूसरे पुनरुत्थान में पुराने नियम के संतों के साथ सम्मिलित होना है, जैसा कि यहां पर 11वें पद में बताया गया है। उनमें से प्रत्येक को श्वेत चोगा दिया गया और उनसे कहा गया, थोड़ी देर तक और विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दासों और भाइयों की जो तुम्हारे सदृश वध होने वाले हैं गिनती पूरी ना हो जाए। ये पद स्पष्ट करते हैं कि महाक्लेश के संतों को और दूसरे पुनरुत्थान में पुराने नियम के संतों के साथ आपस में एक दूसरे के साथ सम्मिलित होना आवश्यक है। जब वे सम्मिलित हो जाएंगे, सबकी संख्या पूरी हो जाएगी, तब परमेश्वर पिता इन प्राणों का पलटा लेंगे जो अभी उस स्थान में सुरक्षित हैं, जो मसीह के लिए वध हो गए हैं, जो परमेश्वर की साक्षी के कारण शहीद हो गए हैं। तब हम छठी मोहर को देखते हैं, छठी मोहर का खोला जाना, और यहां हम परमेश्वर के कोप के दिन के विषय में पढ़ेंगे। 12 और 13 पद, जब उसने छठवीं मोहर खोली तब मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और बाल से बने कंबल के समान सूर्य काला और संपूर्ण चंद्रमा लहू के सदृश हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के वृक्ष के कच्चे फल गिर पड़ते हैं। मित्र, ये वास्तव में महाक्लेश के अंतिम भाग का प्रारंभ है। परमेश्वर के क्रोध का महान दिवस हमारे सामने है, ये उसी का चित्र है। महाक्लेश के प्रारंभ में और अंत में ब्रह्मांड में ये प्राकृतिक उथल पुथल होंगे, जैसा कि यूहन्ना बता रहे हैं कि उन्होंने सूर्य को कंबल के समान काला देखा और संपूर्ण चंद्रमा लहू के सदृश हो गया और आकाश के तारे ऐसे गिर पड़े जैसे अंजीर के कच्चे फल गिर पड़ते हैं। ये सब परिवर्तन और ये सब घटनाएं महाक्लेश के प्रारंभ में घटेंगी और अंत के समय में भी घटेंगी। यहां सबसे पहली बात हम देख रहे हैं, महाक्लेश के प्रारंभ में क्या होने जा रहा है। आइए देखें, योएल नबी की पुस्तक के 2 अध्याय के 30 और 31 में पद को देखेंगे और तब हम प्रेरितों के कार्य उसके दूसरे अध्याय के 20 में पद को भी देखेंगे, क्योंकि इन पदों में दोनों स्थानों पर बताया गया है कि प्रभु के महान दिन के आने से पूर्व सूर्य अंधकार में और चंद्रमा लहू में बदल जाएगा, अर्थात भौतिक ज्योति का आधार समाप्त हो जाएगा। तब दूसरी बात हम देखें कि महाक्लेश के अंत में क्या होगा, दूसरी बात क्या होगी। इन बातों को हम योएल नबी की पुस्तक के 3 अध्याय के 9 से 17 पदों में और यशाया नबी की पुस्तक के 13 अध्याय के 9 से 13 पदों में और यशाया नबी की पुस्तक के 34 अध्याय के 1 से 4 पदों में तथा मती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय के 29 पद में हम देखते हैं। और इन सभी स्थानों में हमको बताया गया है कि महाक्लेश के अंत में वास्तव में कैसा चित्र होगा, कैसी घटनाएं घटेंगी। मती 24 अध्याय के 29 पद में बताया गया है कि उन दिनों के क्लेश के तुरंत पश्चात सूर्य अंधकारमय हो जाएगा तथा चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा और आकाश से तारागण गिरेंगे तथा आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। अन्य स्थानों पर भी हम इसी प्रकार से पढ़ते हैं। ये सभी स्थान महाक्लेश के अंत के समय का चित्र दर्शाते हैं। अवास्तव में आज जो भूकंप आप देखते हैं वह इस भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं है। ये जिसके विषय में अभी हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा वह सब कुछ महाक्लेश काल में घटेगा। सूर्य अंधकार में होगा महाक्लेश काल में, चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं देगा, ये सब महाक्लेश युग में होगा। आकाश से तारागण गिनेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, ये सब कुछ महाक्लेश काल में घटेगा। प्रोफेसर आर ए डेली, इन्होंने अपनी पुस्तक आवर मोबाइल अर्थ में बताया है कि पिछले 4000 वर्षों में भूकंपों द्वारा लगभग 1,30,00,000 जीवन नष्ट हो चुके हैं। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 16 अध्याय के 18 पद के अनुसार इससे भी भयानक भूकंप आना शेष है, जैसा कि यहां पर बताया गया है। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 18 पद, तब बिजली चमकी, आवाज और गर्जन हुआ तथा एक ऐसा बड़ा भूकंप आया जैसा पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर अब तक कभी ना आया था। वह भूकंप इतना बड़ा और शक्तिशाली था। सो हम देखते हैं कि वर्तमान भूकंप एक महान व शक्तिशाली भूकंप की ओर संकेत करते हैं। अभी इनसे भी भयानक भूकंप आना शेष है, ये मात्र चेतावनी के समान है। तब 14 पद में हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 6 अध्याय 14 पद, 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, आकाश फटकर ऐसे हट गया जैसे चर्म पत्र लिपट जाता है और प्रत्येक पर्वत तथा द्वीप अपने स्थान से हट गया। योहन्ना बताते हैं कि उन्होंने इस प्रकार का दृश्य देखा जब 6 मोहर खोली गई। 6 मोहर के खोले जाने पर आकाश फटकर ऐसे हट गया जैसे चर्म पत्र लिपट जाता है। मेरे विचार से हमें इस पद को यथा शब्द ही लेना चाहिए। हम नहूम नबी की पुस्तक के 1 अध्याय के 5 पद में ऐसा ही लिखा हुआ पाते हैं। वहां पर नहूम इस प्रकार से लिखता है, उसके कारण पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती हैं। हां, उसकी उपस्थिति से पृथ्वी वरन संसार और उसके समस्त निवासी थरथरा उठते हैं। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 20 अध्याय के 11 पद में हम पुनः इसी प्रकार के वचन को पढ़ते हैं। वहां लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसे देखा जो उस पर बैठा था। उसकी उपस्थिति से आकाश और पृथ्वी भाग गए और उन्हें कोई स्थान ना मिला। और यहां हम पढ़ते हैं कि आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के वृक्ष के कच्चे फल गिर पड़ते हैं और आकाश फटकर ऐसे हट गया जैसे चर्म पत्र लिपट जाता है और प्रत्येक पर्वत तथा द्वीप अपने स्थान से हट गया। तब 15 से 17 पदों को देखिए, यहां लिखा है, तब पृथ्वी के राजा, प्रधान, सेनापति, धनवान, सामर्थी और प्रत्येक दास और प्रत्येक स्वतंत्र व्यक्ति पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में जा छिपे और पर्वतों तथा चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी दृष्टि से जो सिंहासन पर बैठा है तथा मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ गया है और कौन है जो उनका सामना कर सकता है। मेरे मित्र, यहां पर प्रेरित यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के प्रकोप के विषय में बता रहे हैं। उस समय पृथ्वी पर ऐसे लोग होंगे जो चट्टानों से और पर्वतों से कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो, क्योंकि वे छिपने का प्रयास करेंगे। किसी से छिपने का प्रयास करेंगे? मित्रवर, वे मेमने के प्रकोप से छिपने का प्रयास करेंगे। श्रोता, ये परमेश्वर के प्रकोप का महान दिन होगा। यहां पर एक वाक्यांश हमारे सामने आया है, वो कहेंगे कि मेमने के प्रकोप से छिपा लो। मेमने का प्रकोप, ये विरोधाभासी वाक्यांश है। मेमना और प्रकोप दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। परमेश्वर का प्रकोप प्रभु का दिन है, ये दोनों एक ही हैं। इसके विषय में पुराने नियम के नबियों के द्वारा भी नबूवतें की गई हैं कि पृथ्वी पर प्रभु का दिन आने वाला है और अभी भी वह आने वाला है, अभी आया नहीं है। हमारे समय में भी वह दिन आने वाला है। परमेश्वर के प्रकोप का दिन मेमने के प्रकोप का दिन है और ये वास्तव में अद्भुत कथन है। पवित्र बाइबल विरोधाभासों से भरी हुई है। यहां ये वाक्यांश मेमने का प्रकोप है। मेमना प्रभु यीशु मसीह का जाना पहचाना चित्र है। यदि एक छोटा मेमना क्रुद्ध हो भी जाए तो क्या अंतर पड़ता है? ये तो मात्र चाय के प्याले में आने वाले तूफान जैसा होगा। मित्रवर, हाबिल के दिनों से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा दाता के दिनों तक प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के मेमने के रूप में दर्शाया गया। प्रेरित यूहन्ना कहते हैं, परमेश्वर का मेमना जो सृष्टि के आरंभ में वध किया गया। प्रकाशित वाक्य 13 उसका 8वां पद। श्रोता, परमेश्वर इस छोटे प्रिय पशु को इसलिए रचता है, उसने इसे इसलिए रचा कि वह परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करे। प्रभु यीशु मसीह वह मेमना है जो सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व वध हुए। निसंदेह इससे पूर्व की कोई अन्य मेमने की सृष्टि हो, प्रभु यीशु मसीह वहां थे। मेमना प्रभु का प्रतिनिधि है, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में मेमने के गुण हैं। सर्वप्रथम गुण है कि वो दीन थे, नम्र व दीन थे। मत्ती रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय के 28 और 29 पदों में हमें बताया गया है, जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। फिर दूसरी बात है, वो कोमल थे। ये मेमने का दूसरा गुण है। मरकुस रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के 13 और 14 पदों में प्रभु यीशु मसीह की कोमलता को प्रकट किया गया है। वो कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। बच्चे परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारियों के प्रतिनिधि हैं। वे अहानिकारक थे। प्रभु यीशु मसीह अहानिकारक थे, वो किसी को हानि पहुंचाने वाले नहीं थे। आप कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं पढ़ते, मेमने से सावधान। आप ये लिखा हुआ पढ़ते हैं, कुत्तों से सावधान। मेरे मित्र, प्रभु यीशु मसीह नम्र थे, कोमल थे। गुरु और प्रभु होकर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पांव धोए। उनका जीवन मनोहर व आकर्षक था। उनका सुगंधित जीवन पुष्पों जैसा था। उनका आना परमेश्वर की महिमागान था। उनका ठहरना आशीष था और उनका जाना आशीष वचन था। यहां तक कि अविश्वासी जगत भी उनके जीवन पर मोहित था। मेमना अपने बलिदान के विषय में बताता है, प्रभु के दास अब्राहम ने कहा, परमेश्वर स्वयं ही मेमने की व्यवस्था करेगा। और परमेश्वर ने स्वयं ही मेमने की व्यवस्था की। ये तो हमने मेमने का एक पक्ष देखा, किंतु मेमने का क्रोध, इसके विषय में भी जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह अद्भुत कथन है। श्रोता, परमेश्वर भले से प्रेम करते हैं और बुराई से घृणा। परमेश्वर पिता पवित्र हैं, वह उससे घृणा करते हैं जो उनके प्रतिकूल या विरुद्ध है। प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री के पहले अध्याय के 18वें पद में बताते हैं, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उन सभी परमेश्वरहीन तथा अधर्मी मनुष्यों के विरुद्ध स्वर्ग से प्रकट हुआ, जिन्होंने सत्य को अधर्म से दबाए रखा। मित्रवर, मेमने का प्रकोप ये जल और अग्नि को एक साथ मिलाना जैसा है, किंतु परमेश्वर के प्रकोप की भयंकरता को मेमने द्वारा प्रकट किया गया है। परमेश्वर ने पाप के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर डाली है, और परमेश्वर का नाम धन्य हो, क्योंकि वह इस कार्य में कोई समझौता नहीं करेगा, क्योंकि ये पाप मानव जाति पर ऐसा भयंकर विनाश और प्रकोप लाया है। अब एक दिन आ रहा है जब परमेश्वर के मेमने का प्रकोप प्रकट होगा। आप में से कोई ये कह सकता है कि मैं सोचता था कि वो तो कोमल है, वो पाप को दंड नहीं देगा। तो मेरे मित्र, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, जो भजन संहिता दूसरे अध्याय के 12वें पद में है, पुत्र का सम्मान करो, ऐसा ना हो कि वह क्रोधित हो जाए और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि उसका प्रकोप शीघ्र भड़क सकता है। क्या ही धन्य हैं वे सब जो उसकी शरण लेते हैं। प्रिय मित्र, इन्हीं वचनों के साथ हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 6वें अध्याय को समाप्त करते हैं। यहां तक हमने मुहर बंद पुस्तक की 6 मोहरों के खुलने के विषय में अध्ययन किया। 7वीं मोहर के विषय में हम 8वें अध्याय में अध्ययन करेंगे। अगले कार्यक्रम में 7वें अध्याय के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दें, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा हिंदी कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज के इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिला होगा। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल या शंका है जिसके विषय में आप और अधिकारी से जानना चाहते हैं, तो हमें जरूर लिखें, हम आपकी सहायता करेंगे। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। श्रोताओ, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। तो अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।